पवित्र श्रीमद् भागवत गीता, पवित्र चारों वेद, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र कबीर साहिब की वाणी में छुपे हुए गूढ़ रहस्य अर्थात तत्व को जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन।
धर्मदास ये जग बौराना कोहे न जाने पद निर्वाणा, यही कारण मैं कथा पसारा ये जग से कहिए एक राम नियारा। कि जिनको तुम भगवान मानते हो ब्रह्मा विष्णु महेश ब्रह्म, इन सबसे उत्तम पुरुष है तो अन्य है। पवित्र श्रीमद् भगवत गीता जी अध्याय नंबर 15 का श्लोक नंबर 16 और 17 तीन परमात्मा बताता है। एक क्षर पुरुष ये क्षर ब्रह्म यानी ब्रह्म है, ये काल ज्योति निरंजन है, ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता। और अक्षर ब्रह्म अक्षर पुरुष ये 21 ब्रह्मांड का मालिक पर ब्रह्म है। ये दोनों नाशवान हैं, इनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं वो भी नाशवान है। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 17 में कहा कि उत्तम पुरुष तू अन्य परमात्मा इति उदाहरते, वास्तव वो पुरुषोत्तम वो परमात्मा तो इन दोनों से भी अन्य ही है, वो कोई और है जिसको भगवान कहा जाता है। और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता, वो अव्यय ईश्वर है, वो अविनाशी परमात्मा है। यही परमात्मा बता रहे हैं, धर्मदास ये जग बोराना कोई न जाने पद निर्वाणा। निर्वाण पद माने मोक्ष, मोक्ष मार्ग, पूर्ण मोक्ष मार्ग। यही कारण मैं कथा पसारा जग से कहिए एक राम नियारा। अपनी महिमा आप ही बताते हैं। यही ज्ञान जग जीव सुनावो, सब जीवों का भ्रम नसावो। भ्रम गए जग वेद पुराणा, आदि राम का भेद न जाना। सनातन ब्रह्म आदि राम वो पूर्ण परमात्मा के विषय में कोई नहीं जानता, ये ब्रह्म को ही सनातन मानते नहीं, ये तो नाशवान है। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक 5 में कहता, अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। इसे सिद्ध है कि ये अविनाशी नहीं है, नाशवान है। ब्रह्मा विष्णु महेश स्वयं कहते हैं हमारा तो जन्म और मृत्यु होता है, हम अविनाशी नहीं है। तो तुम जिस जिन भगवानों को भगवान मानते हो वो और अविनाशी अजर अमर मानते हो, अजर अमर नहीं है। देखिएगा श्रीमद् देवी भागवत, श्री देवी भागवत का तीसरे स्कंद का 123 पृष्ठ देखिएगा। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है ये, और इसके अनुवादक हैं हनुमान प्रसाद पोदार, संपादक अनुवादक और चिमनलाल गोस्वामी। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। अपुण्यात्मा ये ब्रह्मा विष्णु महेश स्वयं कह रहे हैं कि हमारा तो जन्म और मृत्यु होता है, और धर्मदास जी कहते हैं तो सुन कह रहे थे तो अजरो अमर है, क्योंकि उनके नकली गुरु ने बता रखे थे शास्त्र विरुद्ध। जिस टीचर को अपने सिलेबस का ज्ञान नहीं और विद्यार्थियों को आउट ऑफ सिलेबस ज्ञान दे रहा है वो टीचर ठीक नहीं। तो हमारे पवित्र हिंदू धर्म के जितने भी गुरु जी थे वो सारे अज्ञानी टीचर थे, हमारे इन सदग्रंथों पुराणों और वेदों और गीता जी से अलग दंत कथा लोक कथा बनाकर हमें सुनाते रहे, तो वो टीचर वो गुरु ठीक नहीं थे। अब देखिएगा ये तीसरा स्कंद 123 पृष्ठ पे। अब श्री विष्णु जी कह रहे हैं, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, दुर्गा के विषय में, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह संसार तुम्ही से उद्वासित हो रहा है, मैं ब्रह्मा और शंकर हम सब तुम्हारी कृपा से विद्वान है, हमारा आविर्भाव, आविर्भाव माने जन्म और तिरोभाव माने मृत्यु हुआ करता है, हम तो जन्मते और मरते हैं, केवल तुम ही नित हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो, जिसे इन ज्ञान था। अब भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्हें से प्रकट हुए तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे बालक हुए, फिर मैं तुमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ, अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। फिर नीचे देखिए, इस संसार की सृष्टि स्थिति और सहार कर मैं तुम्हारे गुण सदा समर्थ है, उन्ही तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। अब इससे तीन बात से दो दी कि ब्रह्मा विष्णु महेश नाशवान है, इनका जन्म और मृत्यु होता है, दुर्गा को प्रकृति भी कहते हैं, और तमोगुण शंकर भगवान, रजोगुण ब्रह्मा जी, सतोगुण विष्णु जी है, और ये तीनों इस दुर्गा के बेटे हैं। इनका पिता कौन है? ये काल है, क्षर ब्रह्म है, क्षर पुरुष है, ज्योति निरंजन है, और ये अपने पुत्रों से, ये काल अपने खाने के लिए, ये मनुष्य जीवन जितने भी यहां प्राणी हैं, इन सबको की उत्पत्ति स्थिति और संहार इन तीनों अपने पुत्रों को एक एक गुण युक्त करके बनाता है। इसीलिए गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक 12-15 में लिखा है कि इन तीनों गुणों से, रजगुण ब्रह्मा, सत्गुण विष्णु, तमगुण शिव जी से जो कुछ भी हो रहा है, उसका मुख्य कारण मैं यानी काल हूं, और मैं इनमें नहीं, ये मुझ में नहीं, और जो इन जिनका ज्ञान इस त्रिगुणमयी माया के द्वारा हरा जा चुका है, जो ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर साधना नहीं करने चाहते, इन्हीं से मिलने वाले लाभ प्रकृति दृढ़ हो गए, वो राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दुष्कर्म करने वाले मूर्ख मेरी पूजा भी ना करते। अब धर्मदास जी को परमात्मा बता रहे हैं, देखिएगा श्रीमद् भगवद गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, अध्याय नंबर 7 का श्लोक 12 से लेकर पढ़ना शुरू करेंगे। और भी जो सतोगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं और जो रजोगुण तथा तमोगुण से होने वाले भाव हैं, उन सबको तू मुझसे ही होने वाले ऐसा जान, परंतु गीता ज्ञानदाता ये काल कह रहा है, परंतु उनमें मैं और वे मुझ में नहीं है। 13 में कहा है, गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस इन तीनों प्रकार के भावों से सारा संसार यानी प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है, इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता। अब 14 और 15 में कमाल कर दिया। अब 14 में कहा है कि क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया है, बड़ी दुस्तर है, ब्रह्मा विष्णु महेश के द्वारा जो हो रहा है, जो उत्पत्ति स्थिति और सार, ये बड़ा खतरनाक काम है, ये बड़े खतरनाक है तीनों, और जो पुरुष मुझको निरंतर भजते हैं वे इस माया का उल्लंघन कर जाते हैं। आगे देखो 15 में कहा है कि माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, ब्रह्मा विष्णु रूपी त्रिगुणमयी माया से के जाल में फंसे हुए, इनसे आगे किसी की भक्ति स्वीकार करने को तैयार नहीं, जिनका ज्ञान इन्हीं द्वारा, इन्हीं से मिलने वाले लाभ पर टिका हुआ है, माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका, ऐसे असुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच, असुर स्वभाव को धारण किए मनुष्यों में नीच और दूषित कर्म करने वाले मूर्ख लोग, मूढ़ लोग मुझे नहीं बजते। अपने आत्माओं, ये विचार की बातें हैं और ये ज्ञान आपको रह रहकर किसलिए सुनाया जाता है, क्योंकि प्रत्येक सत्संग में स्टूडेंट बदल जाते हैं, यानी श्रोता बदल जाते हैं। और हाँ, दास का उद्देश्य है कि ये सु अवसर बड़ी मुश्किल से मिला करे कि सभी पुण्यात्माओं को काल से जमानत मिली और अपने भगवान की अमृतवाणी सुनने का सु अवसर मिला, ये बार बार नहीं उपलब्ध होता। ये तो उसी की कृपा से, वो जमानत लेता है आपका 2-3-4 दिन, जिसकी जिस पर मेहर घड़ी है उसको 500 दिन जमानत ले लेता है परमात्मा, और काल से छुटवा कर लाता है, आपके कामों को ठीक करता है। आपका कोई काम अड़ा हुआ होता है, आप सोचते हैं भगवान यू काम ठीक हो जाए तो मैं सत्संग में जाऊं, तो परमात्मा आपकी वो भी सुनता है ताकि आपकी जमानत हो जा, और फिर काल से कहता है कि भाई छोड़ दे इसने 3 दिन, शायद तू तेरा कह दी पर 3 दिन जमानत दे दे, फिर वापस छोड़ दूंगा तेरे पास लाके। तो 3 दिन में आपको इतना स्याणा बना देंगे 5 दिन में कि आप काल के जाल को समझ कर और अपना सुचारू ढंग से इस कैद में रह करके अपना सफल हो जाओगे, यानी सतलोक चले जाओगे। अब आप गीता जी के 7वें अध्याय के 15वें श्लोक में स्पष्ट कर दिया कि जो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों गुणों की पूजा तक सीमित है, ये राक्षस स्वभाव को धारण किए मनुष्यों में नीच दुष्कर्म करने वाले मूर्ख मेरी पूजा भी ना करते। अब पुण्यात्माओं या अंधेरे की लालटेन बार बार दिखानी पड़ेगी, नहीं तो कोई भक्त बैठा होगा धक्का लगेगा उसके, महसूस करता है कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश रजगुण कैसे हैं, तमगुण कैसे हैं, सतगुण कैसे हैं, ये इनके इतिहास में लिखा इसलिए है। देखो अब देखिएगा श्रीमद देवी भागवत संस्कृत सहित, वो केवल हिंदी में है गीता प्रेस से प्रकाशित, ये देखो और ये कहां से प्रकाशित है, अथ श्रीमद देवी भागवत सभाष्टिकम सहमात्यम खेम राज कृष्ण दास प्रकाशन बंबई, इसके 3रे सकंद में आते, ये 3रा सकंद। अथ श्रीमद देवी भाषा टीका युक्ते 3रे सकंद प्रारंभ थे, और इसमें 11 पृष्ठ आप देखिएगा, ये प्रश्न नंबर 11 और अध्याय नंबर पांच का 8वां श्लोक, 7वां खत्म हुआ आत्मा। हे मातर, हे माता, यदि हमारे ऊपर सदा आप दया युक्त हो तो हमको तमोगुण में किस प्रकार प्रदान किया। शिव जी कह रहा है ब्रह्मा रजोगुण और हरि सतोगुण क्यों युक्त किए हैं। अब संस्कृत और देखो, ये 7वां श्लोक समाप्त हुआ, 8वां प्रारंभ हुआ। यदि दया धर्मना न सदाम्बिके कथम अहम विहित, मैं क्यों बना दिया तमोगुण और कमल जय माने कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा जी को रजोगुण संभव, किस लिए रजोगुण बना दिया, और सुविहित किमो सतोगुण हरि, और विष्णु जी को आपने सतगुण क्यों बना दिया। इति सिद्धम रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी, यहां इन्हीं की पूजा को नकारा है कि जो इन तक की पूजा करते हैं वो राक्षस स्वभाव को धारण किए मनुष्यों में नीच दुष्कर्म करने वाले मूर्ख। इकट्ठी 3 गालियां दे रखी भगवान ने। अब फिर ये 2-4 उदाहरण सुनाने पड़ेंगे ताकि प्रत्येक आत्मा, हमारे बान भाई, बच्चे, बेटे, बुजुर्ग अपने मित्र को, रिश्तेदार को, भाई को, बहन को साथ लाते हैं कि एक बार हमारे गुरुदेव का सत्संग सुन ले। अब वहां तो वो नहीं सुना पाते ना वो सुनने को तैयार होते, और यहां आ जाती है जो पुण्यात्मा हमारे भक्तों के कहने से उसके भाग जाग जाते हैं, क्योंकि यहां 2 घंटे तो उसने सुनना पड़ेगा बैठ के, और सुनेगा तो अंधेरा हटाए पड़ा ही, तो क्योंकि प्रत्यक्ष से सामने है, फिर उसके भाग उदय हो जाएंगे, इसी तरफ जागेगी रब तरह गजब हो। ये सचमुच या तो खजाना लौटा है तत्व ज्ञान का। अब इनको राक्षस स्वभाव का तो क्यों कही मूर्ख। एक जैसे रावण ने शिवजी की तमोगुण शिव की पूजा करी थी और इतनी घोर पूजा की थी, आप 7 जन्म नहीं कर सकते, यहां से काट के और समर्पण कर दिया 10 बार फिर भगवान शिव ने उनको वापस दे दिया, फिर काट दिया, फिर दे दिया। तो ऐसे ऐसी जो है ना समर्पण और भगवान शिव से, अब शिव ने उसको क्या दिया आखिर में, भगवान शिव की साधना से आखे चल के क्या बना, भगवान शिव जी ने उनको सिद्धि दे दी आकाश में उड़ जाने की, रिद्धि दे दी धन प्राप्त करने की, सोने की लंका बना ली, फिर बकवाद गढ़ ला गया, सीता जी उठा लिया, पर स्त्री को उठा लाया और वो कुक्रम करे जो राक्षस कहलाया, मांस खावे शराब पीण ला गया। तो राक्षस स्वभाव के धारण किए हुए मनुष्यों में नीचे ऐसा दुष्कर्म अपनी अपनी माता को, यानी एक तरफ तो हम शिव जी की पूजा करते हैं और उसके भाई विष्णु की पत्नी ठा लिया, और कहते ऐसे मनुष्यों में नीच यानी कितने घटिया कर्म किया और कुत्ते वाली मौत मेरा राक्षस कहलाया। एक भस्मागिरी नाम का साधक था तपस्वी, भगवान शंकर के द्वार पर ऊपर न पैर करके नीचे को सिर करके सिरासन पर 12 वर्ष तप किया। पार्वती की प्रार्थना पर भगवान शिव ने पूछा कि बोल क्या मांगता है भस्मागिरी, मैं तेरे से अति प्रसन्न हूं। भस्मागिरी ने कहा भगवान वचनबद्ध हो जाओ, वचनबद्ध हो गया। कहने लगे आपका भस्म कड़ा दे दे जो आपने भस्म कड़ा रखा है। भगवान ने वचनबद्ध थे ही निकाल कर भस्म कड़ा दे दिया। ज्यो ही उस खड़ा हो गया वो फिर, और ज्यो ही भस्म कड़ा हाथ में आया उस भस्मागिरी के दुष्ट आत्मा के, उसी समय कहने लगे ओले शंकर होशियार तुझे मारूंगा और पार्वती को पत्नी बनाऊंगा। अब इतना जब उसका उग्र रूप देखकर नुकरा, शिव जी को पता था जैसे एक बार कह दिया भस्म तेरी राख हो जाएगी, डांक ठोक दी, फुल स्पीड से दौड़ लिया भगवान शिव जी सिर पे पांव रख के मारेगा वे दुष्ट तो, और भस्मागिरी पीछे पीछे और हमारे अधरो अमर भगवान आगे आगे भाग रहे हैं। मृत्युंजय कालंजय सर्वेश्वर महेश्वर। अब भगवान ने पार्वती रूप बनाया, आगे जाके खड़ा हो गया कि क्यों भाग रहा है, आजा बस भस्मागिरी। अब भस्मासुर कहलाया, भस्मागिरी की जगह भस्मा असुर, असुर माने राक्षस। भगवान बोला पार्वती रूप में के आजा क्यों भाग रहा है, वो तो तेरे निकट आने से रहा तो भाग्या जा रहा डरता, आजा रुक जाओ। रुक जाओ तो पार्वती का मारा तो खड़े कर ही रहा था। अब भगवान रूप में पार्वती रूप में बोले कि कुछ डांस डोंस करके देखा मुझे ताकि मैं तेरे से प्रसन्न हो। वो कहने लगा भस्मागिरी के मैं तपस्या करने वाला संत साधु हूं, मैंने डांस करना नहीं आता। पार्वती रूप में भगवान बोले ला मैं सिखाती हूं तुझे, इस पैर ने आगे कर, इसने पाछे कर, इस हाथ को ऊपर ला, इसको नूकर, इस हाथ को और ऊपर कर। वो तो बोली बूझ हो रहा था कति अंधा, उसने कहा और ऊपर कर, और ऊपर जब शिरपा लिया ना, जब कह दिया भस्म, भस्मागिरी मारिया जो, जब उस अजरो अमर भगवान का पीछा छूटा, जब उसका दिल धड़कना डटा किसका, भगवान शंकर जी का, फिर वो वापस आए। अब परमात्मा ये हमारे पवित्र गीता जी के ज्ञान को समझना बालकों का खेल नहीं है, ये कोड वर्डों में है, क्योंकि चारों गीतों का चारों पवित्र चारों वेदों से मोटे मोटे हैं, उनका संक्षिप्त वर्णन है, संक्षिप्त वर्णन कोड वर्डों में अधिक ही दिया जाता है, तभी वो इसमें आया है। और इस तत्व ज्ञान को तत्वदर्शी संत ही बताएगा, ऐसा गीता जी के अध्याय नंबर 4 के श्लोक 34 में स्पष्ट किया है। अब रजगुण ब्रह्मा की साधना अरण्यकशिपु ने की थी, सिद्धि प्राप्त कर ली, अपने बेटे का दुश्मन बन गया, राक्षस कहलाया। अब ये वैष्णो साधु विष्णु जी के उपासक होते हैं, सतोगुण विष्णु के। एक बार कुंभ का मेला भरा हरिद्वार की पैड़ियां पे, हरिद्वार की हरी की हर की पैड़ी हरिद्वार में, वहां पर भी लगी। ये गिरी पुरी वैष्णो नागा जितने भी थे ये सारे साधु संत वहां पहुंच गए, अपने उनके ग्रुप बन जाते हैं। गिरी एक उनका अलग स्थान होता है, पुरियों का न्यारा, वैष्णो अलग, नागा न्यारे वो नगन रहते थे। ये नागा और गिरीपुरी ये तो शिव के उपासक, और वैष्णो साधु होते हैं श्री विष्णु जी के उपासक। तो जब परभी का समय था, हर की पैड़ियों पर स्नान सब करना होता है, उसमें कहते मोक्ष हो जाता है, सबका कल्याण हो जाता है। सबसे पहले वो नागा पहुंच गए, कति नंगे रहते हैं, निवस्त्र, वो पहुंच गिर पूरी की हर की पैड़ियों के ऊपर छा गए, स्नान करने के लिए तैयार हुए। पीछे थे वैष्णो विष्णु वाले उपासकों का, साधुओं का, सतोगुण वाले का आ गया टोल। उन्हें देखा हर की पैड़ी के ऊपर तो ये सरड फड़ खड़े हैं नंगे ना, और उन आके कहा नागाओ पहले हम नाएंगे, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, तुम बाहर आओ। अब नागा बोले हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम त्यागी और बैरागी हैं, हम नी इच्छा हैं, वस्त्र तक निधारण करते और हम सबसे श्रेष्ठ हैं, हम परसों स्नान करेंगे। वैष्णव साधु बोले तुम बार मर लो निकम्यो, नहाना न धोना, टट्टी के हाथ भी ना धोते, सिरड फट राख लपेटे, तुम कहेंगे श्रेष्ठ। कहने का भाव ये है कि उस प्रथम स्नान करण पर लठम लठा मोगरा मोगरा तलवार निकाल लाए, जो आत्मा जवाए ठोक दे। यानी 25,000 वह त्रिगुण उपासक, तीनों गुणों के उपासक वह आपस में कटका मर गए। गए थे आत्म कल्याण करण, अपना कल्याण कराए। अब क्या कहते हैं परमात्मा कबीर जी, तीर तुपक तलवार कटारी जमदड़ जोर बदावे हैं, हर पैड़ी हर हेत न जाण्या वाजा तेग चलावे हैं। तेग माने तलवारे, काटे शीश नहीं दिल करुणा ये जग में साध कमावे हैं, जो जन इनके दर्शन को जावे उनको भी नरक पठावे हैं। अपुण्यात्मा हो नाम आत्मा कहा करते इन आम जन साधारण आदमी अच्छे, जैसे कोई स्नान कर रहा हो किसी घाट पे वैसे स्वभावी कर दो, एक आदमी और आ जाके भाई मैं भी ना लू अकाजा, भीड़ सीड़ सी करके उसको भी स्थान दे देते हैं। ये उनते भी बूंदे और कहा महात्मा और महापुरुष, और इनसे इनसे दीक्षा लेकर बता इनका अनुयायियों का क्या होगा। अपरमात्मा क्या बताते हैं, धर्म दास ये जग बोरा ना कोई न जाने ये पद निर्वाण, यही कारण मैं कथा पसारा जग से कहिए एक राम निहारा, यही ज्ञान जग जीव सुनावो सब जीवों का भरम नसाओ, अब मैं तुमसे कहूं चिताई इन त्रिदेवन की उत्पत्ति भाई। तुम ब्रह्मा विष्णु में इस कन्यों का था ना, इनके कोई माता पिता नहीं, ये तो सर्वेश्वर है, महेश्वर है, फलाने हैं। अब इन तीनों त्रे भगवान की कैसे जन्म हुआ यह बताता हूं। पुण्यात्माओं, जो ये परमेश्वर का सौसंवेद यानी कबीर वाणी जो आपको सुना रहा है ये दास, आज से लगभग 600 वर्ष पहले प्रभु ने ये तत्व ज्ञान बोला था, कहा था, जनजन को सुनाया था, पर इन नकली संतों ऋषियों और नकली गुरुओं ने, झूठों ने ये कह करके इनको रिजेक्ट कर दिया इस लाल को कि ये झूठ बोला जुलायो अशिक्षित है, इसी से क्या जाने सदग्रंथों गीता और वेदों और पुराणों के विषय में, क्योंकि वो संस्कृत भाषा में लिखे हैं, ये संस्कृत पढ़ा नहीं है। तो हमारे पूर्वजों ने यह बात पक्की जचगी उन झूठों की कि यह बात तो सही है, वे कबीर जी के जाने वेदों और गीता और पुराणों के ज्ञान को, ये तो यानी संस्कृत तो जानते नहीं, लेकिन इतना जरूर जानते थे कि ये संत पूरे हैं, यानी इनमें सिद्धि पूरी है, क्यों जो भी परमात्मा के पास जाता था आशीर्वाद देते सुख हो जाता। तो 64 लाख शिष्य हो गए थे वे, पर उन्होंने कबीर परमात्मा को भगवान नहीं माना। गुरु मानस कर जानते ते नर कहिए अंध, वो है दुखी संसार में फिर अग काल के फंद। अब वो है ज्ञान जो परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले बताया था, आज सभी सदग्रंथों में विद्यमान है, वेदों में, गीता जी में और इन पुराणों में, कि ब्रह्मा विष्णु महेश का जन्म होता है, इनकी माँ दुर्गा है, पिता यो ज्योत निरंजन ब्रह्म काल है, और यही पवित्र देवी प्राण, पवित्र शिव प्राण, पवित्र ब्रह्मा प्राण और पवित्र श्री मद्भगवत गीता जी प्रमाणित कर रही है परमात्मा की वाणी को। अब मैं तुमसे कहूं चिताई त्रिदेवन की उत्पत्ति भाई, कुछ संक्षेप कुछ संक्षेप कहूं गौराई, सब संशय तुम रे मिट जाई। कुछ संक्षिप्त सा बता दूंगा, पर इसी ढंग से बता दूंगा तेरे सारे डाउट नष्ट हो जाएंगे, सारे संशय खत्म हो जाएंगे। भरम गए जग भेद पुराणा, आदि राम का भेद न जाना, आदि राम प्रिभु, प्रिभु कहते हैं आदि राम, यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 8 में कहा है कि कबीर मनीषी परिभू स्वयंभू, ओह परिभू माने आदि राम सबसे पहले वाला प्रभु, और स्वयंभू माने जिसके कोई माता पिता ना हो उसको स्वयंभू कहते हैं। और उसका विषय में लिखा है कि सुक्रम अकायम ऐसनाविरम, अभी नाड़ियों ने ले लिया कि यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र 8 में लिखा है परमात्मा अकायम है, अकायम ले लिया बस, अकायम माने उसकी काया नहीं है इसलिए निराकार है। अरे भले आदमी फिर स्वयंभू क्यों लिखा उसमें, परिभू क्यों लिखा उसमें, शुक्रम अकायम ऐसनाविरम क्यों लिखा, उसका अर्थ है कि परमात्मा का शरीर तो है। जैसे एक तो मिट्टी की मूर्ति हो, मिट्टी की पत्थर की, एक सोने की हो, मिट्टी वाली तर एक लागते टूट फूट कंडम हो जा, एक आने की भी कोई नहीं, और लोहे की हो हुआ भी जर्जा, लेकिन सोने की मूर्ति हो उसको वो नाश नहीं होता। ऐसे परमात्मा कबीर जी पूर्ण ब्रह्म का जो शरीर है वो बिना नाड़ी का है, जैसे ट्यूबलेस टायर आजकल आने लगे वो बिना ट्यूब के होते हैं और उनमें ट्यूब ना होती और बाकी ट्यूब वाले टायर हैं, ऐसे ही वो परमात्मा का है तो वो भी टायर लेकिन है तो वो भी सह शरीर, लेकिन सुक्रम अकायम ऐसनाविरम, सुक्रम माने माता पिता के योग से बना हुआ, यानी शक्ति से नहीं बना वो, उस शक्ति बिना नाड़ी और सुकमात करके बिना वाले शरीर बिना है, लेकिन वो स्वयंभू परिभू है। परिभू माने सनातन परमात्मा सबसे पहले वाला, प्रि माने पहले वाला, भू माने प्रभु, परिभू। भरम गए जग वेद पुराणा, उस आदि राम का भेद न जाना, राम राम सब जगत बखाने हैं, आदि राम कोई बिरला जाने, राम राम तो सब कह हैं परंतु वो आदि राम जो सबसे पहले वाला राम है उसको कोई नहीं जानता। अब आज तक हमें परमात्मा की, राम की, गॉड की डेफिनेशन भी नहीं पता था जब तक कबीर जी का ज्ञान हमारे हृदय में नहीं समाया था। अब परमात्मा ने परिभाषा बताई है, जैसे राम कहो, स्वामी कहो, साहब कहो, जैसे हम अधिकारियों को साहब बोलते हैं, तहसीलदार साहब है, फिर जो है ना ऊपर डीसी साहब, एसडीएम साहब, डीसी साहब, और फिर कमिश्नर साहब, फिर मंत्री साहब, फिर मुख्यमंत्री साहब, प्रधानमंत्री साहब, ये सारे साहब तो हैं लेकिन इन साहबों की शक्ति में दिन रात का अंतर होता चला जाता है। ऐसे परमात्मा कहते हैं ये ब्रह्मा विष्णु महेश भी स्वामी है, ये एक ब्रह्मांड में एक विभाग के एक मंत्री है, ये भी साहब है, ये भी कुछ प्रभु है, राम है, स्वामी है। रजोगुण विभाग का मंत्री ब्रह्मा जी, सतोगुण विभाग के मंत्री श्री विष्णु जी, और तमोगुण विभाग के मंत्री श्री शिव जी, और इनके पिता जो काल है ये एक ब्रह्मांड का मुख्यमंत्री साहब समझ लो, यानी ये भी राम है, इनका पिता भी राम है, 21 ब्रह्मांड का राम, और परब्रह्म भी राम है, वो सात संग ब्रह्मांड का राम, और परम अक्षर ब्रह्म यानी पूर्ण परमात्मा भी राम है, वो असंग ब्रह्मांड का राम, वो है वास्तव में राम, सबका मालिक वो वास्तव में सही साहब वो है। राम राम सब जगत बखाने, आदि राम कोई बिरला जाने, राम राम तो सब को, राम है कौन सा जिसने जिसका मोक्ष होगा, क्या नाम है, किसने देखा उसकी, कहा उसकी वेदी जो उसको पाने की, क्या तुम्हें पता है, नहीं, यही ज्ञान अब आपको बताया जा रहा है। अब कहते हैं परमात्मा कहते हैं धर्मदास जी जो मैं कथा सुना रहा हूं इसको तू आगे सबको बताना, इस सृष्टि रचना को, और बुद्धिमान लोग तो तुरंत स्वीकार करेंगे, हृदय तलाओगे, रे तेरा गजब हो, ये इतना बढ़िया ज्ञान हमने कदे सुना ना देखा, सब प्रमाण रहे, वो तो तुरंत स्वीकार करेंगे, और मूर्ख जो होंगे उनका पल्ले ना पड़े, वो उन्हीं अज्ञानियों की छुरी पर आरूढ़ रहेंगे, उनको मरण देखना मानते थे। परमात्मा कहते हैं चातुर प्राणी चोर हैं, मूढ़ मुग्ध हैं ठोठ, और संतों के निकाम के इनको दे गड़जोट। ये चातुर प्राणी ते नकली गुरु ऋषि महर्षि ते करी सारी वेदों के विरुद्ध ज्ञान ठोक गए जनता में, और इब आख्या देख के भी नहीं मानेंगे, वो कति मूढ़ हैं, ये प्रमाण जो दास दिखा रहा गीता वेद और पुराणों के, इनको देखकर जो नहीं मानते वह मूड ठोट हैं, तो परमात्मा ने कहा उन्नत पड़ारण दे उन डोरा, उनका कोई जिक्र नहीं। इन पुण्य पुण्यात्माओं के लिए सत्संदेश है ये जो बुद्धिमान है। ज्ञानी सुने सो हृदय लगाई, मूर्ख सुने तो समझ में न आई, गम नहीं पाई। क्या बताने जा रहा हूं, जो समझ में नहीं आओगी बुद्धिमान ना के समझ में आवेगी। माँ अष्टंगी पिता निरंजन, ये जम दारुण वंशन अंजन। इन तीनों देवताओं की माता तो दुर्गा भाई या प्रकृति है, और इनका पिता यो ज्योति निरंजन काल ब्रह्म है। माँ अष्टंगी पिता निरंजन, ये जम दारुण वंशन अंजन, पहले कीन निरंजन राई, पीछे से माया उपजाई। अब सतलोक में जो परमात्मा ने सृष्टि की, सबसे पहले हम अनामी लोक में कबीर जी के शरीर के अंदर थे, परमात्मा के शरीर में सभी आत्माएं समाई थी। उसके बाद परमेश्वर ने अपनी रचना की, वहां के नीचे के तीन लोक और अपनी वचन शक्ति से रचे। अनामी लोक से नीचे अगम लोक, अगम लोक से नीचे अलख लोक, अलख लोक से नीचे फिर सत्य लोक बनाया। और परमात्मा ने अपने ही अन्य तीन रूप और बनाए, और अगम लोक में अगम पुरुष, अलख लोक में अलख पुरुष और सत्य लोक में सत्य पुरुष नाम से अपने ही तीन रूप बनाकर विराजमान हुआ। परमात्मा ने सतलोक में सबसे पहले सृष्टि की, अपने एक वचन से उन्होंने 16 द्वीप बनाए, और फिर 16 वचनों से 16 शब्दों से 16 पुत्रों की उत्पत्ति की। उनमें से एक एक उनमें से अचिंत, सहजदास, जोगजीत, तेज आदि उनके 16 नाम हैं, 16 के अलग अलग नाम हैं। तो उनमें से एक अचिंत से कहा कि बेटा तुम सृष्टि रचना कर। परमात्मा ये दिखाना चाहते थे कि कहीं ये बालक आगे चलकर अपनी चलाने लग जा और इनकी विरान माटी ना हो जा, तो ये दिखाने के लिए कि ये चुप रहे रहेंगे और यहां अपनी भक्ति अपना आनंद से रहेंगे। तो अचिंत से कहा कि तू सृष्टि रच। अचिंत ने अपनी वचन शक्ति से एक ये अक्षर पुरुष पर ब्रह्म की उत्पत्ति की। ये अक्षर पुरुष यानी ये परब्रह्म स्नान करने के लिए वहां बने हुए मान सरोवर पर गया। वहां हमारा शरीर श्वासों से नहीं चलता, वहां श्वास से जीवन नहीं है, इसलिए वहां अजर अमर है। तो वहां क्या गया, सरोवर में चला गया, जाके नींद आनंद आया ठंडे ठंडे जल में और सो गया, काफी समय तक बाहर नहीं आया। तब परमेश्वर कबीर जी ने उसी अमृत के जल सरोवर से एक जल लेकर के अपनी वचन शक्ति से एक अंडा बनाया, उस अंडे को जल में छोड़ा, वो गड़गड़ गड़गड़ करता हुआ जब नीचे को चला तो उस अक्षर पुरुष की निंद्रा भंग होगी। जब किसी की निंद्रा भंग होती है, जो अधूरी नींद उठता है, तो उसमें दुख सा होता है, किसी ने डिस्टर्ब कर दिया, उसने क्रोध से थोड़े से कोप से देखा कि किसी ने छेड़ दिया मैं, तो उस कोप के कारण वो अंडा फट गया और वो कोप उसमें वो व्यक्ति जो उसमें से निकला उसमें भी कुछ अंश हुआ। तो जो ही वो उसमें से निकला, कौन निकला, ये ज्योति निरंजन, ये काल ब्रह्म ब्रह्म सर पुरुष निकला। इन दोनों को आकाशवाणी की परमेश्वर ने ऊपर से कि तुम दोनों बाहर आओ, अक्षर पुरुष तो निंद्रा में था, तुझे जगाने के लिए सब किया था, तुम दोनों बाहर आओ और अचिंत के लोक में रहो, अचिंत के द्वीप में रहो। अब ये तीनों अचिंत, छर पुरुष और अक्षर पुरुष, ब्रह्म और परब्रह्म, ये तीनों एक द्वीप में रहे और बाकी 16 जो थे वो अलग द्वीप में। तब तक परमात्मा ने कहा कि अचिंत तेरे बस की बात नहीं है, तुम्हारे बस की बात नहीं है, सृष्टि रचना मैं ही रचूंगा। क्योंकि परमेश्वर ने ये दिखाना था झटका कि तुम्हारे बस का कुछ नहीं है, कहीं तुम फिर बीच में टांगड़ा बैठो। तो उसी समय परमेश्वर ने हम सभी आत्माओं की जितनी आज ये काल के लोक में इस कीड़ी चिट्टी हाथी गधे कुत्ते सुअर जो भी देव देवता बने हैं ब्रह्मा विष्णु महेश ये सब वहां थे सतलोक में, हम सबकी वहां अपने वचन से उत्पत्ति की। इस काल ने सोचा, ब्रह्म ने सोचा, ज्योति निरंजन ने सोचा कि हम तीन तो एक द्वीप में, ये बाकी सब एक एक द्वीप में। तो उसने अपने सोचा कि मैं तप करूंगा तब से राज मिलेगा। इसने 70 युग तक तप किया। तब परमेश्वर ने पूछा कि क्या चाहता है ज्योति निरंजन। तब इसने कहा पिताजी मुझे ये स्थान कम है, अलग स्थान दे दो। प्रभु ने कहा कि तेरे 70 युग के तप के बदले में तेरे को 21 ब्रह्मांड देता हूं। जैसे साहूकार पिता कोई अपने बच्चों को बेटे को अलग करे तो 21 प्लाट दे दे, उसमें कंस्ट्रक्शन कुछ ना हो। तब इसने सोचा इन प्लाटों का क्या करूंगा, ब्रह्मांडों का इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन भी हो, कुछ सामग्री लूं परमात्मा से, क्योंकि प्रभु के पास कबीर जी ही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता, यानी सबकी मनोकामना पूर्ण भी वही करता है। इसने 70 युग तप फिर किया। जब तीसरी बार इसे दूसरी बार तप किया तो प्रभु ने बोला, पूछा कि क्या मांगता है बोल, तू जो मांगा था तुझे दे दिया मैंने। तब इसने कहा कि प्रभु मुझे कुछ सृष्टि की सामग्री दे दो और कंस्ट्रक्शन मटेरियल, मैं कुछ इसमें रचना करूं। परमात्मा ने 5 तत्व और 3 गुण दे दिए, अगले बेटा खेल खिलौना दे। अब हम इसके जाल में कैसे फंसे, हम वहां ठाठ से रहा करते, ना कोई जन्म था ना मृत्यु थी, ना कोड था ना रोग था, ना किसी का लेना था ना देना था। बड़े भंडार परमात्मा के, जैसे पुण्यात्मा आप यहां आते हो और जो 5 दिन रुकेगा ना उसको गणा पता होगा, और जो 1-2 दिन पहले आ रहे होंगे और ज्यादा महसूस कर रहे होंगे। यहां बना बनाया भोजन, बिछे बिछाए वस्त्र, और सुबह से हमारा आरती हो, दिन सुबह नित्यनेम हो, दिन में रमेणी हो, और विशेष समय में अपना नाव है दो है भगवान का भजन करे, कोई चिंता है कोई ना। तो हम सतलोक में न्यो रहा करते हैं, या कोई द्वेष नहीं किसी से, वो कोई जानबूझ कर लड़ाई करे है, तने 2 कंबल बिछा रखे मैं 4 बिछाऊंगा है, तो मेरे आए पर क्यों बैठ गया मरने, उन्हें वह लड़ाई करनी हो तो 6 कर लो, वो तो मूर्खा की बात होया करे। पहले तो 2 कंबल बिछाने नहीं चाहिए, 2 गदले नहीं बिछाने चाहिए, नियम के विरुद्ध है, पाप के भागी हो तो तुम अड़ बटे उबड़ ना रहे हो भगवान भजने। तो इस तरह की जो गलतियां करोगे वो तो यहां भी सजा पाओगे, और नहीं तो यहां कति द्वेष नहीं, सारे बाण भाई अच्छे लगे, भक्ति परमात्मा की चर्चा चाल, एक दूसरे से पूछा आपको क्या लाभ हुआ, मुझे ज्ञान बता दे, ना पता हो तो इस तरह की चर्चा चले। तो हम सतलोक में यूं रहा करते थे, लेकिन उड़ना टिका गया है हमारे अंदर के खरपतवार पैदा हुआ जब यो ज्योति निरंजन तप कर रहा था, तो हम इसके तप पर आसक्त हो गए। रग जब हो गए 70 युग हो गए खड़े लगे, ओहो अब बता हमने के मिला था, यो तो कुआं पड़े था, पर यह हमारा बीमारी वहां से लगी, हम इस पर आसक्त हो गए। परमात्मा ने कई बार कहा परमेश्वर कबीर जी ने कि बच्चों तुम इसकी तरफ मत देखो, ये इसकी क्रिया इसको मिलेगी, तुम अपना मस्त रहो, और ये ठीक नहीं है इसका जो साधना ये कर रहा है। हम ऊपर से तो पिताजी का आदेश सुनकर न्यू हो गए, और अंदर से चाक कसूती होगी, ये तो बस इसके साथ रहन लग जावा, यह बीमारी मार गई हमने। अब जैसे वो ही रोग आज भी अपने अंदर विद्यमान है, जैसे ये हीरो और हीरोइन अभिनेता अभिनेत्री अपनी तरह रोजी रोटी कमावे और हमने मूर्ख बनावे, ये नौजवान बच्चे इनकी देख कर झूठी चटक मटक ना, और नो कहा फलाना हीरो टॉप का है, और यहां उनमें से कोई एक आ जावे इसार में या बरवाला में, कोई हीरो आ जा यानी अभिनेता आ जा, देख नौजवान बालका की वहां वो खड़ा इतनी दूर से दिखेगा, वो खड़ा सारे दिन देख खड़े रहे वहां पुरुष की बाट में, लेना एक न देने दो, धक्के खा कर सामने घर ना जा, बताओ वो के देगा उनको, वो अपनी रोजी रोटी कमावर, हम उस पर आसक्त हो गए कसूती तरह। तो इस या बीमारी हमारे वहां लगी थी, तब करे था यो काल, और हम उसको प्रासक्त हो गए। अब आप देख लियो, यहां कोई भी बरवाला वाला देखने नहीं आता, क्यों हो गया? पुण्यात्मा जो संपर्क में आ गई है। और यहां कोई एक वो हठ योगी आके खड़ा हो जाए, तपन लाग जा, सारे बरवाले में चर्चा हो जाएगी। अरे बाबा, 5 दिन तक खड़ा है भाई, वो नहीं बैठता भी, 10 दिन हो गए, सारे देखना, लोटे दूध के ला और 10-10 रुपये चढ़ा, रो सल्फा पीवा फिर बेटी का बाप। तो इस बीमारी या यू रोग हमारा पहले से लग रहा है और इसी बीमारी में हम मर रहे हैं, यही इसी कारण से हम फंसे इसके। अब काल ने सोची कि ब्रह्मंड भी बन गए और सृष्टि रचना का भी सामान हो गया। इवे एक लाइन में करूंगा कि किस ब्रह्मंडों में मेरे साथ ये आत्मा भी होनी चाहिए। इसने फिर तप शुरू किया, 64 युग तप किया। तो परमात्मा परमेश्वर कबीर जी ने कहा कि ज्योति निरंजन, तू क्या मांगता है? जो तू मांगता था वो मैंने तुझे दे ही दिया, अब क्यों हट कर किए बैठा है? अब काल ने कहा कि ज्योति निरंजन ने कहा, पिताजी मुझे कुछ आत्मा दे दो, मेरा अकेले का दिल नहीं लगता। परमात्मा बोला, नहीं भाई, ये मेरी आत्मा मेरे अंदर से निकली, मेरे वचन से उत्पन्न मेरे बेटे हैं, मेरे बच्चे हैं, ये मैं तुझे किसी कीमत पर, किसी तप के, किसी जप के, किसी भी कारण से, किसी प्रतिफल पर नहीं दे सकता। और ले ले तने कोई ब्रह्मांड चाहिए तो और दे देता हूं। पर परमात्मा को पता था कि हम पतिभर्ता पद से गिर चुके हैं, हम अपने पिता से हृदय हटाकर इस काल के अंदर लगा चुके थे, हम सतलोक में रहने योग्य नहीं रही थी। तो प्रभु ने एक ऑप्शन रख दी कि भाई जो आत्मा सब इच्छा से तेरे साथ जाना चाहती है उनसे तू पूछ ले, मैं भेज दूंगा। अब वो ज्योत निरंजन वो हीरो आया हमारे पास, जो आज हम गधे कुत्ते सुअर कीड़ी गंदी नाली के कीड़े बने फिरे, जंगली जानवर बने फिरे और वहां सतलोक में ठाट से रहा करते थे, वो हमारे पास आया तो हम उसके चारों तरफ घूम गए, क्योंकि हम तो पहले सावा थे। उसने कहा कि मैंने पिताजी से 21 ब्रह्मांड प्राप्त किए, वहां पर झरने बनाऊंगा, ऐसे बढ़िया बढ़िया जो है ना दूधों की नदी चलाऊंगा और देव बनाऊंगा, तुम्हें महादेव बना दूंगा, अजी मेरे साथ चलोगे? हम बोले, हमने क्या कहा कि हम तो चलेंगे, चल पड़ेंगे, हम चलने को तैयार हैं, यदि पिताजी आज्ञा दे दे तो हम चलने को तैयार हैं। ज्योति निरंजन ने परमेश्वर कबीर जी से कहा, सत्य पुरुष से, कि हे परमात्मा, हे परम पिता, हे पिताजी, कुछ आत्माएं मेरे साथ चलने को सहमत है। प्रभु ने कहा कि मेरे सामने हाँ भरवा दे, चल। अब परमेश्वर ने आकर कहा कि जो ज्योति निरंजन के साथ जाना चाहते हैं अपना हाथ खड़ा करो। अब अपने पिता के सामने जो पहले कहा करता कि इसका नहीं मत देखो या अच्छा नहीं है, तो हम एकदम सन्नाटा छा गया, क्यों कर खड़े हुआ, कैसे हाँ भरे, कैसे सहमति दे, नीची गर्दन कर ली सबने। परमेश्वर कबीर जी बोले कि ज्योति निरंजन, तू कह रहा था ये सहमत है तो कोई बोलता है कोई ना? तब एक आत्मा ने सोची, बिगड़गी बात, या तो हम तो रह गए यहीं, इसके पास नहीं है, खड़ी हो फट दे, खड़ा हुआ, खड़ा होकर कहने लगा, पिताजी मैं इसके साथ जाना चाहता हूं। फिर कहता, फिर तो हमने सोची हम रह गए, पाचा हम सभी खड़े हो गए, पिताजी हम मैं भी जैसे बालक होया करे ना, पहले एक बार शुरू हो जाए फिर सारे हाथ खड़ा कर दिया करे। परमात्मा बोले, ठीक है भाई, जितने भी आत्माओं ने तेरे साथ जाने की सहमति व्यक्त की है उन सबको मैं भेजूंगा तेरे पास, पर विधिवत भेजूंगा, आप जाइए अपने पर। ये 21 ब्रह्मांड वहीं थे पहले सतलोक में। तो ज्योत निरंजन अपने ब्रह्मांडों में चला गया। परमेश्वर कबीर जी ने जिस आत्मा ने सबसे पहले स्वीकृति दी थी, खड़ा हो गया था, उसका लड़की रूप बना दिया या प्रकृति दुर्गा बनाई, और हम सभी आत्माओं को सूक्ष्म रूप बनाकर इसके अंदर अपने वचन से प्रवेश कर दिया। जैसे शनज में शुक्राणु भरकर और दूसरे में प्रवेश कर दिए जाते हैं, ऐसे परमात्मा ने अपनी वचन शक्ति से हम सभी को दुर्गा के अंदर प्रवेश कर दिया। इसको कह दिया कि बेटी मैंने तेरे को सबल शक्ति दे दी है, वचन शक्ति दे दी है, तो जितने जीव कहे एक बार मुख से उच्चारण कर दिए, इतने नर इतने पुरुष बने, वो नर मादा बन जाएंगे। और आप जाओ ज्योत निरंजन के पास, काल के पास, ब्रह्म के पास, तब तक इसका नाम काल नहीं था, अब इसका काल नाम पड़ेगा। अपने पुत्र सहजदास से कहा कबीर जी ने कि जा अपनी बहन को ज्योत निरंजन के पास छोड़िया। अब सहजदास और बता देना कि मैंने इसको लड़की के अंदर वो सभी जीव डाल दिए हैं आत्माएं जो तू तेरे से तेरे परासक्त थी, तेरे सहमति दी थी, और इसको वचन शक्ति दे दी है, जितने जीव तो कहेगा ये वचन से बना देगी, उत्पन्न कर देगी। सहजदास उस लड़की को अपनी बहन को प्रकृति यानी दुर्गा को ज्योति निरंजन इस ब्रह्म के पास छोड़ाया और सारी कहानी बताया। जो ही जब लड़की युवा थी, युवती होने के कारण इसका रंग रूप निखरा हुआ था, परमेश्वर कबीर जी ने एक और परीक्षा लेनी चाहिए थी उस काल की, कितना गिर सकता है। इस लड़की के प्रजनन इंद्री नहीं बनाई थी, रूप स्त्री का बना, लड़की का बना दिया था। अब ज्योति निरंजन ने जब देखा कि अकेली लड़की है तो उसके मन में दोष आ गया, दोष आ गया तो उस लड़की यानी दुर्गा के साथ इसने दुष्कर्म करने की चेष्टा की। दुर्गा इसके दुष्प्रयत्न को समझ कर कहने लगी कि ज्योति निरंजन तो मुझे छुआ मत, आंख खोल ले, मैं और तू एक ही पिता की संतान है, तू पहले अंडे से उत्पन्न हुआ, बाद में हमारी उत्पत्ति हुई पिता के वचन से, अब तू मेरा बड़ा भाई है, मैं तेरी छोटी बहन हूं, और बहन भाई का ये कर्म महापाप का कारण है, तू जुल्म ना करे। इसने कुछ नहीं सुना, ये अंधा हो गया, विषय वासना कामदेव का वश हो गया, और इसने अपने अभद्र तरीके से लड़की को आलिंगन बंद करना चाहा, और जो ही इसने अभद्र तरीके से मुंह खोला, लड़की ने सूक्ष्म रूप ना इसके पेट में शरण ले ली, वहां से पुकार की पिताजी मेरी रक्षा करो, मेरे साथ ऐसी बदतमीजी की इसने मुझे खा लिया, मैं इसके पेट में चली गई अपनी इज्जत बचाने के लिए। लड़की ने कोई और स्थान नहीं देखा उससे अपनी इज्जत सुरक्षा का, तो उसके सूक्ष्म रूप धारण करके इसके पेट में चली गई। तो वहां से परमेश्वर ने अपने पुत्र सहज जोगजीत का रूप बनाया, जोगजीत, और आकर खड़ा हो गया, कहने लगे ज्योत निरंजन सुन ले, तने जुल्म कर दिया, आदेश सुन ले परम पिता का कि आज से तेरा नाम काल होगा, 1,00,000 मानव शरीरधारी जीव तू खाएगा, 1,00,000 उत्पन्न करेगा। और लड़की को उसके पेट से निकाल दिया और कहा कि जाओ तुम दोनों यहां से भाग जाओ, 21 ब्रह्मांड समेत यहां से देश निकल जाओ, ये आदेश है परम पिता का। इतना कहते ही वो 21 ब्रह्मांड जहाज की तरह चल पड़े और 7 शंख कोश की दूरी पर नील नील पदम शंख अरब खरब नील पदम शंख 16 शंख कोश, एक कोश लगभग 3 किलोमीटर का होता है, 16 शंख या 16 गुणा में 3, 48 शंख किलोमीटर की दूरी पर ये 21 ब्रह्मांड सतलोक से आगे। अब ज्योति निरंजन ने सोचा कि ईव और के सजा मिलेगी, मिल ली जो मिलनी थी, दुर्गा के साथ फिर दुर्व्यवहार शुरू कर किया। दुर्गा ने फिर कहा कि ज्योति निरंजन तू आंख खोल ले, मेरे पास पिता का दिया हुआ वचन है, मैं जितने तू जीव कहेगा मैं वचन से बना दूंगी, उत्पन्न कर दूंगी, तो जुल्म ना करे, ये मैथुर सृष्टि मत चला, देख पहले तो तू मेरा बड़ा भाई, पहले तू उत्पन्न हुआ, बाद में मेरी उत्पत्ति हुई, मैं तेरी बहन होगी, फिर मैं तेरे पेट से बाहर आई हूं तेरी बेटी होगी। यानी इसने हर शर्मिंदगी कोशिश की कि कुकर टिक जा, पर ज्योति निरंजन ने एक नहीं मानी और अपने नाखूनों से प्रजनन इंद्री बनाई और दुर्गा के साथ बलात्कार किया, जबरदस्ती शादी की और रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी की उत्पत्ति की, 3 पुत्र उत्पन्न की। अब सुनो उस कबीर परमेश्वर की ये जो आपको पहले वर्बली सुनाई दास ने मौखिक, अब परमात्मा के काव्यों यानी लोकोक्तियों के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से, दोहों के माध्यम से जो ज्ञान सुना वो सुनो। और फिर ये सभी पुराण गीता जी इसका समर्थन देंगे, पहले ये आपको वाणी सुनाता हूँ, बाद में फिर कभी समय आने पर आपको वो ये भी दिखाएंगे। पुराणों में प्रमाण, धर्मदास ये जग पुराणा कोई न जाने पद निर्वाणा, यही कारण मैं कथा पसारा जग से कहिए एक राव नियारा, यही ज्ञान जग जीव सुनावो सब जीवों का भरम निसाओ, अब मैं तुमसे कहूं चिताई त्रिदेवन तीनों देवता गर्भा विष्णु में इसकी उत्पत्ति भाई, कुछ संक्षेप कहूं गौराई सब संशय तुम रे मिट जाई, भरम गए जग वेद पुराणा आदि राम का भेद न जाना, राम राम सब जगत बखाने आदि राम को बिरला जाने, अब मैं तुमसे कहूं चिताई त्रिदेवन की उत्पत्ति भाई, ज्ञानी सुने सो हृदय लगाई मूर्ख सुने तो गम ना पाई, माँ अष्टंगी पिता निरंजन ये जम दारुण वंशन अंजन, पहले कीन निरंजन राई पीछे से माया उपजाई, पहले ज्योति निरंजन अंडे से उत्पन्न किया बाद में दुर्गा की उत्पत्ति परमात्मा ने की, माया रूप देख अति शोभा देव निरंजन तन मन लोभा, दुर्गा के सुंदर शरीर को देखकर इसके मन में उसकी तरफ आसक्ता हुई, काम देव धर्मराय सताए देवी को तुरंत दरकाए, विषय वासना के वश होकर इस काल धर्मराय निरंजन ने दुर्गा के साथ दुर्व्यवहार किया, पेट से देवी करी पुकारा हे साहेब मेरा करो उभारा, टेर सुनी तब हम ता आए अष्टंगी को बंद छुड़वाए, सतलोक में कीन्हा दुराचारी काल निरंजन दीना निकारी, माया समेत दिया भगाई 16 संघ कोष की दूरी पर आई, माँ अष्टंगी अष्टंगी और काल अब दोई मंद कर्म से गए बिगोई, अष्टंगी या दुर्गा और यु काल मंद कर्म, मंद कर्म कौन सा था दोनों का, कि दुर्गा का तो मंद कर्म ये था, हमारा बुरा कर्म ये था कि हम अपने पिता को छोड़कर इसके ऊपर आसक्त हुए, हम अपने पति को छोड़कर इस निकली के ऊपर आसक्त हुए, हम पति वर्ता पद से गिर गए, ये हमने दुष्कर्म किया बुरा कर्म किया मंद कर्म किया, और काल ने दुर्गा के साथ दुर्व्यवहार किया इसने ये मंद कर्म किया, दोनों मंद कर्म के कारण वहां से गिर गए। अष्टंगी और काल अब दोई मंद कर्म से गए बिगोई, धर्मराय को हिकमत की ना नख नाखनों से नख रेखा से भग कर लेना स्त्री इंद्री बना ली, धर्मराय की ये भोग विलासा माया को रही तब आशा, दुर्गा गर्भवती हुई तीन पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए, तीन देव ये विस्तार चलावे इनमें यो जग धोखा खावे, ये तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु में इस काल के साजबाज ने जोड़े बैठे हैं, रिनी की पूजा में सारा संसार धोखे में पड़ा हुआ ये काल के पुत्रों की पूजा कर रहा है, तीन देव और अवतारा ताको बजे सकल संसारा, तीन गुणों का ये विस्तारा धर्मदास मैं कहूं पुकारा, आगे ना परमात्मा ने गीता वाला ज्ञान बताया कि तीन गुणों का ये विस्तारा यानी ब्रह्मा विष्णु महेश का ही ये विस्तार है, और धर्मदास मैं कहूं पुकारा, तीन गुणों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसारे कह कबीर निज नाम बिना कैसे उतरे पार, तीन गुणों की भक्ति से तीन गुणों की भक्ति में यो भूल पड़ो संसार, ब्रह्मा विष्णु महेश रजगुण ब्रह्मा सदगुण विष्णु तमगुण शिव जी की पूजा में ये सारा संसार भूला पड़ा है, और कह कबीर निज नाम बिना उस यथार्थ सत नाम बिना सार नाम बिना ये पार क्यों करोगे, अपनात्मा ये बार बार समय नहीं मिलता सत्संग का, हम पहले ना इस भक्ति मार्ग पर ना थे जब VCR ले आया करते हैं और तीन फिल्म लाते सारा कुंबा बैठ कर देखते, अक 100 रुपये लाग रही किराए के 6-9 घंटे तड़ सांझ में बैठ जाते हैं 6 बजे और तड़क 9 बजे और सुबह 4 बजे तई चाह बनाए जंदर देखे जंदर बैठे रहते कति नहीं सोया करते, और कोई बकवाद, अब इसमें थोड़ा सा समय जरूर लगेगा आपके ऊपर अमृत बच रहा है, अब इससे लिंक है एक 10 मिनट का सत्संग आपको इनकी उत्पत्ति दिखा दो ब्रह्मा विष्णु में इसकी उत्पत्ति, जो परमात्मा ने वाणी बोली है वो पुराणों में विद्वान है गीता जी में विद्वान है कि इनके माता पिता ब्रह्मा विष्णु में इसका जन्म दुर्गा और काल से हुआ, पहले शिव पुराण में दिखाते हैं, ये देखिएगा पवित्र शिव पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। और ये देखिएगा हनुमान प्रसाद पोदार इसका संपादक है, अनुवाद करता है, और ये प्रकाशक मुद्रक गीता प्रेस गोरखपुर गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। ये दास जो ना एक बार नासिक में सत्संग कर रहा था, नासिक में हमने ऐसे एक मैदान में सत्संग किया टेंट लाके, और सत्संग सुनने आए, हमने प्रोजेक्टर ले रखा जैसे आप देख रहे हो, नो दिखाया वो सारा ये कुछ, तो तीन चार बुड्ढे बैठे, यो संत तो कोई षड्यंत्रकारी दिखा है, इसने लगा है या ऊपर, क्योंकि वो मैं अंदर से ना दिखाऊं था ये वाला, ये गीता प्रेस गोरखपुर से ये वाले, सिर्फ ये दिखाकर शुरू कर दिया उन्होंने एक दो बार। तो फिर उन्हें सोचा अभी तक कोई षड्यंत्रकारी है, झूठा कपटी ऊपर ऊपर की जलत बना रहा है, किसी छाप ला रहा है। तो फिर मैंने याद आ गई कि अंदर भी दिखाना चाहिए, वही अंदर भी दिखा दिया। अब देखो ये अंदर भी यहाँ लिखा है अरिया, तो उन्हें बोले रहा तुरा गजब हो जो सचियत है। फिर ने बोला अपनी देखांगे जाकर, अपना देखांगे, अब इतना अज्ञान हो रहा है जो हमारे घर पर रखी थी उनको हमने ना पढ़े आज तक, उनको पढ़ते भी थे पर समझ में नहीं आवे, कहते गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी समझे न सार रहे अज्ञानी, फिर भगवान की वाणी गलत हो जाती है नहीं था कबीर जी की। तो पुण्यात्मा इसलिए सारा कुछ दिखाना आवश्यक हो गया, और ये सीडी बहुत समय तक हजारों वर्षों तक ये भक्तों के काम आवेंगी, इसलिए रह रहकर ये प्रमाण दिखाई जा रही है। ये देखिएगा इसमें रुद्र संहिता 99 पृष्ठ पर, ब्रह्मा जी से नारद ने पूछा तो कि सृष्टि के विषय बताओ किसने रची। ब्रह्मा जी ने कहा ब्रह्मन देव शिरोमणि तुम सदा ही सब जगत के उपकार में लगे रहते हो, तुमने लोगों के हित की कामना से बहुत ही अच्छी बात पूछी है, उत्तम बात पूछी है। जिस समय समस्त चराचर जगत नष्ट हो गया था, सर्वत्र अंधकार ही अंधकार था, कुछ भी नहीं था, उसमें के था नीचे देखो, उसमें तत् सद ब्रह्म, इस श्रुति में जो सत सुना जाता है एकमात्र वही शेष था। आचार्य देखो जिस परब्रह्म के विषय में ज्ञान और अज्ञान से परिपूर्ण उक्तियों द्वारा इस प्रकार विकल्प किए जाते हैं, ज्ञान और अज्ञान यानी झूठी साची, ब्रह्मा का झूठी साची बताऊंगा, क्योंकि झूठी तो वो है जो इसके जन्म से पहले किसी ने अटकल लाई है, और सच्ची इसमें वो है जो इसके जन्म के बाद जब ये होश में आया कमल के फूल पे उसके बाद का जो लिखा है वो ठीक लिखी।